नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन दिनों हम बाइबल में से भजन संहिता नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 22 तक का अध्ययन किया। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मसीह एक महान चरवाहा। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु और जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम फिर से एक बार आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, एकाग्रतापन का मन दीजिए, ताकि प्रभु जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, सुनते हैं, निश्चित रूप से आपका वचन हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के हृदय से बोलने और बातचीत करने पाए। हमारी प्रार्थना है कि आज आप मुझसे भी बातचीत करें, हम सबसे बातचीत करें। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। आज के इस वचन के द्वारा वे भी अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सकें। पिता परमेश्वर, आप हम सब की सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम एक विशेष विषय पर अध्ययन करेंगे, भजन संहिता 23, मसीह एक महान चरवाहा। भजन संहिता 23 जो एक सर्वप्रिय भजन है, भजन 22 के बिना यह अर्थहीन होगा। मैं कहने पर विवश हूँ कि हमारे पास भजन संहिता 22, 23 और 24 का समुच्चय भजन है जिन्हें चरवाहे के भजन कहते हैं। ये तीन भजन प्रभु यीशु का निम्न व्यक्त चित्रण प्रस्तुत करते हैं। भजन संहिता 22 में वह एक अच्छा चरवाहा है। यीशु ने स्वयं कहा कि वह एक अच्छा चरवाहा है और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। इसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 11 पद में पाते हैं। भजन संहिता 23 में वह एक महान चरवाहा है। इस शीर्षक को इब्रानियों के अंत में महान आशीर्वाद में आप देख सकते हैं, इब्रानियों के पत्र 13 अध्याय उसके 20 और 21 पद में। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। भजन संहिता 23 उसे एक महान चरवाहा प्रकट करता है और भजन संहिता 24 में हम उसे प्रधान चरवाहा के रूप में देखते हैं। पहला पत्रस की पत्री 5 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। संक्षेप में भजन संहिता 22 में हम क्रूस को देखते हैं, भजन संहिता 23 में चरवाहे का डंडा और भजन संहिता 24 में राजा का मुकुट। ध्यान दीजिए, भजन संहिता 22 में प्रभु यीशु मुक्ति दाता है, भजन संहिता 23 में वह संतोष देने वाला है और भजन संहिता 24 में वह परम प्रधान है। भजन संहिता 22 में वह नींव है, भजन संहिता 23 में वह प्रदर्शन है और भजन संहिता 24 में वह आशा है। भजन संहिता 22 में वह मरता है, भजन संहिता 23 में वह जीवित है और भजन संहिता 24 में उसका पुनः आगमन है। भजन संहिता 22 में अतीत की चर्चा करता है और भजन संहिता 23 वर्तमान की चर्चा करता है। और भजन संहिता 24 भविष्य की चर्चा करता है। भजन संहिता 22 में वह भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। भजन संहिता 23 में वह भेड़ों को प्रेम करता है और भजन संहिता 24 में वह अपने आगमन पर ज्योति प्रदान करता है। इन तीनों भजनों में हमारे सामने मसीह का कैसा अद्भुत चित्रण है। मेरे मित्रों, अब हम भजन संहिता 23 का निकट से निरीक्षण करें, जो संभवतः वचन का सबसे अधिक परिचित अंश है। कभी कोई लेख इतना अधिक प्रचलित नहीं रहा है। रूढ़िवादी यहूदी हो या जागृत यहूदी, वे सब इस भजन को जानते हैं। सब कलीसियाई वर्गों के विश्वासी इस भजन से परिचित हैं। संसार ने इसके सौंदर्य को अंतर्ग्रहण किया है। जी हाँ, इस भजन के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है, जबकि इसके मात्र 6 पद छोटे और सरल हैं। किसी ने अति उत्तम बात कही है, मनुष्य कुछ भी कहे, यदि संक्षेप में कहे तो कोई चिंता नहीं। किसी और ने कहा, यदि जिनके पास कहने को कुछ नहीं है वे चुप ही रहें, तो संसार एक अति उत्तम स्थान होगा। भजन संहिता 23 में कुछ ही शब्द हैं। वर्षों पूर्व एक व्यवसायिक प्रबंधक ने अपनी दीवार पर एक नारा लिखकर रखा था कि सब देखें। यदि आपके पास कोई महत्वपूर्ण बात है तो 5 मिनट में कहें। भजन संहिता 23 को पढ़ने में केवल 45 सेकंड लगते हैं। यह संक्षेप में है और यह दर्शन शास्त्र नहीं है, न ही यह किसी प्रकार की थियोलॉजी है, यह वैधानिक या वैज्ञानिक दस्तावेज भी नहीं है। यह एक विलक्षण सादगी का भजन है। हमें इसके लेख को पढ़ने से पूर्व इसके विषय में कुछ बातें समझना आवश्यक है। यह तो स्पष्ट है कि दाऊद इसका लेखक है, परंतु एक प्रश्न है, क्या उसने यह भजन तब लिखा था जब वह चरवाहा था या जब वह एक आयुष्मान राजा था? इसका उत्तर जानना महत्वपूर्ण। डॉक्टर फ्रैंक मॉर्गन ने इसे वृद्ध चरवाहे का गीत शीर्षक दिया। मुझे यह अच्छा लगता है, वरन मैं इससे सहमत भी हूँ। राजा दाऊद उस चरवाहे दाऊद को कभी नहीं भूला था। भजन संहिता 23 में एक अनुभवहीन लड़की की बातें नहीं है, अपितु यह एक अनुभवी मनुष्य के परिपक्व विचार हैं। दाऊद अपने जीवन के अंत में अपने जीवन के उतार चढ़ावों पर ध्यान करता है और उसी समय उसने यह भजन भी लिखा था। सिंहासन पर बैठे एक वृद्ध राजा को वह चरवाहा बालक स्मरण आया। जीवन ने इस व्यक्ति को मारा, पीटा, विमुड़ किया और सोटे से वार किया था। वह एक कठोर सैनिक था। वह एक परिपक्व सैनिक था जो विजय, कठिनाइयों और अभावों से परिचित था। वह गीतों और छाओं को समझता था। वह घावों को भी समझता था। वह परखा और ठोक कर देखा गया था। यही कारण है कि भजन संहिता 23 में हमारे पास अपरिपक्व बातों की अपेक्षा एक दीर्घकालीन जीवन के फल और परिपक्व निष्कर्ष हैं। मेरे मित्रों, इस भजन के आरंभ में कहा गया है, यहोवा मेरा चरवाहा है। आप किस अधिकार से मेरा चरवाहा कहते हैं? क्या यह भजन सबके लिए है? मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि भजन संहिता 22, 23 और 24 समुच्चय में एक ही कहानी सुनाते हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह को अच्छे चरवाहे के रूप में जानना है, जिसने अपने भेड़ों के लिए जान दे दी। इससे पूर्व कि आप उसे एक महान चरवाहे के रूप में जानते, भजन संहिता 23 से पूर्व आपको भजन 22 के चरवाहे से परिचित होना आवश्यक है कि आप कह पाए, यहोवा मेरा चरवाहा है। हम देखेंगे चरवाहे की आत्मा के पवित्र स्थान का प्रगटीकरण। तो आइए आप मेरे साथ भजन संहिता 23 उसके 1 और 2 पद को पढ़िए, जहां पर लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। ध्यान दें, मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, ले चलता है। यह भजन वह और मुझे का है। यहाँ ध्यान इस बात पर है कि परमेश्वर और मनुष्य की आत्मा के मध्य अन्य कुछ नहीं है। यहोवा मेरा चरवाहा है। पद एक घोषणा और परिणाम है। यह कहना एक बात है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। बहुत लोग हैं जो यह कहते हैं और सुनने में भी यह बहुत अच्छा लगता है, परंतु क्या आप इसे व्यक्तिगत बनाकर कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, उसके मुक्ति कार्य, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के अधिकार से आप उस पर भरोसा रखकर उसे अपना चरवाहा कह सकते हैं? यह भी कहना आसान है कि यहोवा मेरा चरवाहा होगा, परंतु दाऊद ने यह भी नहीं कहा। उसने कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यह उसकी घोषणा थी। मेरे प्रियो, मुझे कोई घटी न होगी, लिखा है मुझे कोई घटी न होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दाऊद ने यह नहीं कहा कि मुझे कोई घटी नहीं रही, परंतु यह कहा मुझे कोई घटी न होगी। मुझे किस बात की आवश्यकता है? मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है। मैं एक भेड़ हूँ, मूर्ख छोटा सा जानवर। मेरे चरवाहे को यह सुनिश्चित करना है कि मुझे सुरक्षा की घटी ना हो, वह मेरी रक्षा करता है। जब छोटी भेड़ कहती है मुझे कोई घटी ना होगी और मैं कभी नाश ना होऊंगा, तो इसलिए कि चरवाहा बहुत ही अच्छा है, मुझे कोई घटी ना होगी एक भावी बात है, और इससे परमेश्वर की संतान को आश्वासन मिलता है कि विश्वासी की सुरक्षा चरवाहे के हाथों में है और विश्वासी के परिणाम उसकी घोषणा पर निर्भर करते हैं। एक बार मेरे एक मित्र ने मुझे भेड़ पर प्रचार करते हुए सुना तो बाद में मुझसे कहा, आपने मुझे यह समझाया कि भेड़े बहुत अच्छी होती हैं, वे छोटे और प्यारे प्यारे से जानवर होते हैं, आपने उन्हें बड़ा ही असहाय प्रकट किया है, मैं आपको कुछ भेड़े दिखाना चाहता हूँ। उसने मुझे भोज पर आमंत्रित किया और अनेक भेड़े एकत्र की। भोजन के पश्चात वह मुझे उनके मध्य में ले गया और कहा, ये भेड़े बहुत हठीली हैं और बात नहीं सुनती, वे गंदी भी हैं। मैंने कहा, यह मनुष्य जाति का चित्रण है, वे हमारा प्रतीक हैं। भेड़ों को सुरक्षा ही नहीं परिपूर्णता और संतोष की भी आवश्यकता होती है। वह मुझे हरी हरी चारागाहों में ले जाता है, लेटाता है। यह परिपूर्णता है जो भेड़ों का स्वभाव जानते हैं। वे बताते हैं कि भेड़ें यदि भूखी हो तो बैठती नहीं है। यदि भेड़ चारागाह में बैठ गई है तो इसका अर्थ है कि उसका पेट भरा हुआ है। मसीह हमारी परिपूर्णता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 35 पद में यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। वह मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास तो ले चलता है। भेड़ें लहरें मारती हुई पानी से डरती हैं। उन्हें रुका हुआ अर्थात स्थिर पानी भी अच्छा नहीं लगता है। वे वह पानी नहीं पिएंगी जो सुअर पीता है। यह वह सब मानव जाति से संबंधित है। आज हमें विश्राम की आवश्यकता है, शारीरिक और मानसिक इतना नहीं जितना जीवात्मा को। स्मरण करें कि दाऊद ने भजन संहिता 55 के 6 पद में क्या कहा था, भला होता कि मेरा कबूतर के से पंख होते, मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। मेरे प्रियो, वह सबसे दूर चला जाना चाहता था, परंतु उसने पाया कि दूर भागने से समस्या का हल नहीं होता है। उसे परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उस पर आश्रित होना है, सीखना है। मत्तयी सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में प्रभु यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं चरवाहे के मन के विचारों का व्यौरा। भजन संहिता 23 उसके 3 और 4 पद में लिखा हुआ है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वह मेरे जी में जी ले आता है। दाऊद जानता है कि यह क्या अर्थ रखता है। दाऊद ने पाप किया था, वह वृंद से भटकी हुई छोटी भेड़ था, उसके चरवाहे ने उसका पुनरुत्थान किया। वह अपने नाम के निमित्त मुझे धार्मिकता के मार्ग में ले चलता है। वह तो लेकर चलता है, परंतु हमें भी उसके पीछे चलना है। प्रभु यीशु ने अपने बैरियों धर्म गुरुओं से कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 25 से 27 पद में, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। भेड़ें केवल अपने ही चरवाहा के पीछे चलती हैं। इस प्रकार आप पहचान सकते हैं कि वे भेड़ें किसकी हैं। यीशु के युग में चरवाहे भेड़ों को हांकते नहीं थे, वे उनकी अगुवाई करते थे, परंतु आज ऐसा नहीं है। जब कभी मैं उस क्षेत्र में जाता हूँ जहाँ पर भेड़ें पाई जाती है, तो मैंने देखा है कि चरवाहा भेड़ों की अगुवाई कर रहा है। यीशु के युग में चरवाहा दिन प्रतिदिन अपने भेड़ों के साथ रहता था। भेड़ें अपने चरवाहे को पहचानती थी और उस ही के पीछे चलती थी। हमारा चरवाहा हमें उचित मार्ग में ही लेकर चलता है और यह हमारा उत्तरदायित्व भी है कि हम उसके पीछे चलें। आगे हम देखते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी किसी हानि से न डरूंगा। जी हाँ, यह साहस और विश्राम है। मृत्यु जीवन की सर्वोच्च परख है, यह मरणोशैया की बात नहीं है। हमारी मानव जाति मृत्यु की तराई में वास करती है। जन्म लेते ही मनुष्य एक महान घाटी में प्रवेश करता है जो मृत्यु की तराई है। आप लगातार उसमें चलते हैं। विदेशों में कहा जाता है कि आपको सड़क पार करने में शीघ्रता करना चाहिए क्योंकि वहां केवल जीवित और मृतक ही होते हैं। यदि आप शीघ्रता ना करें तो आप मृत हैं। हम सब मृत्यु की तराई में चलते हैं। किसी ने एक अति उत्तम बात कही, वह ज्यों ही जीवन देता है त्यों ही उसे लेना आरंभ कर देता है। हम सब मृत्यु की तराई में हैं। मृत्यु की छाया सदा हम पर बनी रहती है, परंतु मैं मृत्यु की घाटी में चलते हुए भी किसी हानि से न डरूंगा। वह ऐसी प्रोत्साहन भरी ढाड़स बंधाता है, यदि हमारा कोई प्रियजन जो परमेश्वर की संतान है मर जाए तो भी यही हमारा ढाड़स है। आगे हम देखते हैं, किसी हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि हमारा चरवाहा सदा हमारे साथ है। मृत्यु के समय तक मैं उसे अपने साथ ही चाहता हूं, जब भी मैं कहीं जाऊं या जब मैं मरूं। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सोंटा सुरक्षा के लिए था और लाठी दिशा निर्देश के लिए। वह हमें कोमल सुधार और कठोर दंड भी देता है। हमारी सुरक्षा के लिए उसके पास सोंटा है, परंतु हमारे दिशा निर्देशन के लिए उसके पास लाठी है। उसके पास भटकने वाली भेड़ के लिए लाठी भी है। इससे मुझे शांति मिलती है। अब क्योंकि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, प्रतिदिन मेरी आयु बढ़ते जा रही है, मैं अपने अतीत पर विचार करता हूँ तो मुझे यह बोध होता है कि वह सोंटा शांति दिलाता है। उसने अनेक बार उसका प्रयोग मुझ पर भी किया है और मैं उसका आभारी हूँ क्योंकि उसके कारण मैं बढ़ती उम्र में लौट आया हूँ। हम सबको इसकी आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं, चरवाहे के मन की आशा और आनंद का प्रतिबिंब। भजन संहिता 23 उसके 5 और 6 पद में लिखा हुआ है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये दो पद चरवाहे के आनंद और आशा को प्रकट करते हैं। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। यह हमारा परमानंद, फलना फूलना और परिपूर्णता का प्रदर्शन है। यह सब आनंद का पटुका बांधे है। आज के परिप्रेक्ष्य में यह मेज क्या है? मेरे विचार में यह प्रभु की मेज है। जिस समय यह भजन लिखा गया था उस समय यह इसराइल के सांसारिक आशीषों को व्यक्त करता था। हमारे लिए यह भजन वह आत्मिक आशीषों की प्रतिज्ञा करता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है जिसकी आज हमें आवश्यकता है। हम अपने आप में जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, यह आनंद का चिन्ह है। हमें आज आनंद से भरे होना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 10 पद में प्रभु यीशु ने कहा कि वह इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रभु यीशु चाहता है कि हमारा आनंद पूरा हो। मुझे एक छोटी बालिका की बात याद आती है। उसने कहा, प्रभु मेरा कटोरा भर दे, मैं अधिक मात्रा संभाल नहीं सकती, परंतु मैं बहुत अधिक उंडेल सकती हूँ। अब इस भजन का अंतिम पद है, भजनकार हमें हरी हरी चारागाहों में निर्मल जल से यहोवा के भवन में लाता है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 2 और 3 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हम ना तो अच्छी जाति की भेड़े हैं और भेड़ का मूल्य अधिक नहीं होता, परंतु हमारा चरवाहा बहुत अच्छा है। क्या आप इस पल यह कह सकते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है? यदि आप कह पाए तो इस भजन की सब अनुपम आशीषें आपकी हैं। वह ऐसा चरवाहा है जो आपके लिए अपनी जान दे चुका है और आपका उद्धारक है, उद्धार करता है, तो यह भजन आपके लिए है। मेरे मित्रों, यहाँ पर भजन 23 समाप्त होता है और भजन 24 में हम पाते हैं जिसका विषय है मसीह प्रधान चरवाहा है। यह मुकुट का भजन है। यह भजन प्रधान चरवाहे के आगमन की चर्चा करता है। प्रथा के अनुसार यह भजन दाऊद की रचना है और जब वह वाचा का संदूक क्रियत रीम से यरूशलेम ला रहा था तब उसने यह भजन गाया था। इसे हम इतिहास की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 से 8 पद में पढ़ते हैं। कहा जाता है कि यह भजन कव्वाली के समान एकाकी गायकों के प्रतिवाद में जुलूस द्वारा गाया जाता था। जोसेफस एक इतिहासकार के अनुसार वाचा का संदूक लाने वाले जुलूस के सामने 7 भजन मंडलियां चल रही थी। वाचा का एक संदूक मंदिर निर्माण तक दाऊद ने सियोन पर्वत पर एक मिलाप वाला तंबू बनाकर उसमें रखा था। इस भजन का आनंद मेरे विचार में डेलिटस और गबलीन की व्यवस्था द्वारा समझने में सहायता होगी। यह भजन 2 भागों में विभाजित है। पहला, राजा के साथी जो राज्य में प्रवेश करते हैं, पद 1 से 6। दूसरा, राज्य की स्थापना हेतु राजा का आगमन। दाऊद के युग में इस भजन को सुनना बहुत ही आनंददायक होता होगा। राज्य में प्रवेश करने वाले राजा के साथी जुलूस का गान करते थे। आइए हम देखें भजन संहिता 24 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। पृथ्वी यहोवा ही की है। दाऊद फिर यहोवा को सृजनहार कहता है। यह पृथ्वी उसकी है। यह पृथ्वी राजनीतिक दलों की नहीं है, किसी बड़े मनुष्य की भी नहीं है। यह समाजवादियों की पृथ्वी नहीं है। आज अनेक जन इस पृथ्वी का संचालन करना चाहते हैं, परंतु सच तो यह है कि यह पृथ्वी परमेश्वर की है। उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 9 और 10 पद में सृजन कार्य के 3रे दिन परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जब परमेश्वर ने जल को एक स्थान में बांधा तब भूमि दिखाई दी। यह मृत्यु से उत्थित जीवन था जो पुनरुत्थान का प्रतीक है। मेरे मित्रों, यह एक एकाकी गायक की बात है। आइए हम आगे देखें भजन संहिता 24 उसके 3 पद में लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? ध्यान दीजिए, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? इसका उत्तर हम अगले पद में पाते हैं जो उत्तरवादी एकाकी गायक है। भजन संहिता 24 उसके 4 में लिखा है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, उसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ने वाले वे ही होंगे जिनके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, और वे जिन्होंने अपने मन को व्यर्थ की बातों की ओर नहीं लगाया है। शायद मैं वहां न रहूं, यह पद मुझे बाहर कर देगा, परंतु मैं वहां रहूंगा क्योंकि मसीह में मैं वहां रहूंगा। उसने मुझे परमेश्वर के अनुग्रह के आसन के समक्ष प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व लिया है। मेरे प्रियो, वह आज अपने महायाजक पद पर है क्योंकि मैंने उसमें विश्वास किया है और वह मेरा उद्धार करता है। गायन मंडली और एकाकी गायक भी यही कहती है। भजन संहिता 24 उसके 5 और 6 पद में हम पढ़ते हैं, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। मेरे मित्रों, अब यरूशलेम प्रवेश करते समय इस जुलूस की आप कल्पना करें। आगे हम भजन संहिता 24 उसके 7 पद में पढ़ते हैं, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। फाटकों से आवाज आती है, वह प्रतापी राजा कौन है? गायन मंडली उत्तरवाद में गाती है भजन संहिता 24 उसके 8 और 9 पद में, वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। फाटकों में से फिर पूछा गया, यह प्रतापी राजा कौन है? गायन मंडली उत्तरवाद में संगीत वादों के साथ गाती है भजन संहिता 24 उसके 10 पद में, वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। मेरे विचार में इन पदों में 2 घटनाओं का उल्लेख है। पहले तो यह प्रभु यीशु के स्वर्गरोहण का चित्रण है और फिर उसके पुनः आगमन का भी चित्रण है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह कौन है? संसार तो नहीं जानता, परंतु यह भजन प्रकट करता है कि वह प्रतापी राजा कौन है। सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है, सामर्थी और पराक्रमी, युद्ध में पराक्रमी। तब द्वारों को कहा गया है कि वे ऊंचे हो जाएं कि प्रतापी राजा प्रवेश करे। मेरे मित्रों, आज तो वह नहीं आया है, संसार ने उसका त्याग किया है। यह प्रतापी राजा कौन है? वह सेनाओं का प्रभु, प्रभु यीशु मसीह है। वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। वह प्रतापी राजा है। भजन का लिखता है, सेला, अर्थात इस पर विचार करें, इससे आपका मन आशीषित होगा। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको भी उस महान राजा को स्वीकार करने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि आपने आज के इस अध्ययन को अवश्य ही समझ लिया है। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414, और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in। नमस्कार।
तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है सहारा तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं।